అనంత కోట సంత మహాత్మాకి జయ. రామ రామ బాల ప్రజ్ఞా జానత కహాయ యగాధ గుణ సార ఫలతర బ్రంద సగూఢ జో పితా పిలావణ హారం బావన పురుషన పోచహి భుజా ప్రలంబ తలే యో వక్త శ్రోతానకో పరా పరమ కహ దేత అనుజ శిఖావత తాతకో అపనా కుల కృతకా యో వక్త సాహిక సుదృఢ జాత కరత ఆరామ్ భగతి కవన ప్రకార విద విన విన కహు విచార కై సముందిత గ్రంథ మే శిశు నై జాణన. గురు ప్రకరణ మే బాతి బాతి కే ప్రసంగో కే మాధ్యమ సే ఇస్ జీవాత్మా కో పరమాత్మా కే చరణో మే జుడ్నే కే లియే బాతే బతాయి జాతీ హై. आगे के प्रसंग में पहले तो अपने नेकी वदी की बात पर विश्राम किया. जीवन में मनुष्य शरीर जो मिला है परमात्मा ने दिया है वो अपने को शुभ कर्म करने के लिए दिया है. अब इस शुभ अशुभ के ज्ञान के लिए हमें सत्पुरुषों के शरण में जाना पड़ता है. वे जो बातें बताते हैं उन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना होता है तभी हम वे सब बन पाएंगे. आगे जिज्ञासु के रूप में बात बताई जा रही है कि एक जिज्ञासु बनकर के महापुरुषों से निवेदन करता है. मतलब एक तो श्रोता होते हैं ना, श्रोता श्रोता कई प्रकार के माने गए हैं. एक तो होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता. श्रोता तो वो है आगे सत्संग में पहुंच गए, आरामदायक जगह देख ली, जगह में बैठ करके तकिया ले लिया, भेद का सहारा ले लिया और सत्संग में वैसे ही दूसरी बातों से कोई लेन देन होता नहीं है इसलिए तकिया लगा बैठ करके आराम से नींद लेने लग गई. वो तो होता है एक तो श्रोता हो जाता है. एक होता है श्रोता जो ऊपर से चलने वाले पानी के प्रवाह को आगे नहीं चला जाए इसलिए रोक करके वो अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतारता है. और एक होता है श्रोता जो श्रोता सिपाहियां काटे नहीं टुकड़ा करे आने वाली बात को कुत्तर के द्वारा उसको करता रहता है, टुकड़े टुकड़े करता रहता है. मतलब हृदय में धारण करने की जिज्ञासा नहीं है, केवल उस बात को अपनी विद्वता के माध्यम से अपनी जिद के माध्यम से काटने की आदत होती है. तो श्रोता भी लाभ नहीं ले सकता और श्रोता भी लाभ नहीं ले सकता. जो श्रोता है सुनता है क्या बात कही जा रही है वही उस सत्संग की बात का लाभ ले सकता है. तो जिज्ञासु बनकर के जो सामने बैठता है उस बात को सुनना चाहता है कि केवल मेरे लिए ही बात कही जा रही है, कहीं दूसरा ये बात नहीं ले ले, इतनी अंदर दृढ़ निष्ठा रखने के बाद यदि कुछ बात सुनी जाती है तो वो हृदय में उतरती है. जब तक सुनने वाले बहुत हैं, संख्या ज्यादा है, अब मैं सुनू नहीं सुनू क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे लिए वो होने वाले सत्संग भी नहीं जैसी है. क्योंकि हम सर्टिफिकेट तो दे देंगे सत्संग बहुत बढ़िया हुई, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि क्या कहा सत्संग में ये तो पता नहीं, ये पता नहीं. सर्टिफिकेट दे दिया सत्संग अच्छी हुई, बहुत बढ़िया संगत हुई, लेकिन कहा क्या ये भगवान जाने. ऐसे नहीं भैया. तो यहां जिज्ञासु बनकर के बात क्या कही जा रही है उसका मेरे साथ में कितना संबंध है इस भाव को रखते हुए यह जिज्ञासु ने वापस बात पूछी कि महाराज बाल बुद्धि में हूं, बालक बुद्धि हूं, मैं क्या जानू, बड़े गंभीर बातें, तत्व की बातें बहुत गंभीर होती है। कोई ऊंचा पेड़ है, पेड़ पर फल लगा हुआ है, बावने आदमी उन पेड़ों से फल लेना चाहे तो कैसे ले बेचारा। यदि कोई लंबा आदमी और जिसके हाथ ऊंचे हों, वो आदमी यदि उसे फल तोड़ करके दे दे तो उसको तो सहज में फल मिल जाएंगे। तो जिज्ञासु, मैं तो एक अबोध बालक के समान हूँ और आप सत्पुरुष हो जो वास्तव में बहुत लंबी पहुंच वाले, लंबी भुजा वाले हो, यहाँ तक कि केवल संसार तक पहुंच नहीं अभी तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा तक आपकी पहुंच है। आप यदि चाहो तो परमात्मा भी आपके वचनानुसार हाजिर हो सकते हैं। बावन पुरुष ने पहुंची भुजा प्रलंब बदले, लंबी भुजा वाला लेता तो आप भुजाओं के समान लंबी भुजा वाला का मैंने आश्रय लिया है। तो श्रोता को भी बातें बता करके परब्रह्म परमात्मा के प्यारे बना देते हैं। वही जो उन्हें अच्छी बात लगती है वही श्रोताओं को बता करके और पहुंचवान उनको भी पहुंचवान बना देते हैं श्रोता लोगों को। छोटा बालक होता है, बड़े माता पिता बड़े होते हैं, वे जैसी इच्छा होती है बालक को क्या सिखाना वही बात उससे कहते हैं, सिखाते हैं, बेटा ऐसे बोला करो, ऐसे बोलो, ये करो, यो करो। तो वो कहे जैसे बालक सीखता है और सीख करके उनके अनुसार ही अपना बर्ताव करता है, अपना काम धंधा करता रहता है जैसा पिता ने सिखाया। तो जो श्रोता लोग हैं वो एक अबोध बालक के समान हैं और गुरुजन वे बड़े माता पिता के समान हैं, परंतु उस बालक को पिता के पास में रहना चाहिए, उनका उनकी अंगुली पकड़ करके रहना चाहिए, तब काम बनता है। अंगुली तो पकड़े नहीं और वो इधर भागे उधर भागे और पास में आवे नहीं तो वो पिता से क्या सीख सकता है, वो गुरु से जो उपदेश सके उनसे क्या श्रोता लाभ ले सकता है। भक्ति कवन प्रकार विध, हे भगवान मेरे हृदय में भक्ति के विषय में कुछ जानकारी जाने की इच्छा हुई है। जैसे अब ये प्रसंग चल रहा है गुरु प्रकरण का, जीव को गुरुमुखी बनना चाहिए और कभी भी नुगरा नहीं रहना चाहिए, तो अब ऐसे समय में गुरु महाराज के प्रति किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए वो मैं बात जानना चाहता हूँ। भक्ति नौ प्रकार की, जो शास्त्रों में, शास्त्रों और संतों के वचनों में अंतर कुछ नहीं है, वे केवल उन शास्त्र की बातों को सरलतम बता बना करके हमें समझा देते हैं, सरल भाषा के माध्यम से केवल इतना ही अंतर है। भक्ति कितनी प्रकार की हुआ करती है आप भिन्न भिन्न करके मुझे समझाइए महाराज, ग्रंथों में उसका किस प्रकार का विश्लेषण मिलता है, जो शिशु नहीं जानता है वो आप जैसे महापुरुषों की शरण में आकर के जानना चाहता है। भक्ति प्रथम कूण कहिए, जन प्रसाद तय सहजा लइए, आप सत्पुरुषों के संग में आएंगे तो वो जरूर अवश्य ही उन बात का सहज में ज्ञान हो जाएगा। जब ये बात सुनी, वक्ता का वचन है कि तत्वक्ता वचनारतम सिद्धंती सिद्धवाच, सबको बीजक एक है राम सतगुरु सुराज। वास्तव में वक्ता का कथन वक्ता रूप में दयाल जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे जब जिज्ञासु की बात सुनी सत्पुरुषों ने तो उसके अंतःकरण की बात को पहचान करके गुरु प्रसाद प्राप्त सुगम, कि भाई गुरु महाराज के साथ में संबंध जोड़ लो, बड़ी सुगमता से ये बात तुम्हारे प्राप्त हो जाएगी, अपना आत्मसमर्पण महापुरुषों के चरणों में कर दो। शरणागति के विषय की बात है कि जब शरणागति हो जाएंगे अब सत्पुरुषों के, जिनमें हमारे को विशेषता दिखाई दे रही है, जो हमारे दृष्टि में महापुरुष हैं, जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, उन महापुरुषों के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। श्रवण श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पहले तो ये नवदा भक्ति है, नौ प्रकार की भक्ति। भगवान के विषय की बात सुनना, भई सर्वण भगत जदा गुरु ज्ञान सुने मन मेट अदा पुनिनाद सवादन और रचे गुरु ज्ञान विचार विचार सचे निर्गुण निजानन उच्चरियो पुन सेव सुगुणियो करियो मनवाद सत गुरु पूज करे और आन उपाय न कान धरे। सारंग सरब बन राग जुही, एक वर्ष सिरजन हार सुई, दिन बाल दयाल शरण जके, जीव कारण तारण पार तके। जैसे हरिण एक संगीत की ध्वनि सुन करके मोहित हो जाता है, भले ही उसको मरना पड़े वो परवाह नहीं करता, इसी प्रकार अपने कानों से मन के सारे विकारों को छोड़ करके कि कभी ये अच्छा लगे कभी ये अच्छा लगे, सब अच्छा पना छोड़ करके एक सत्पुरुषों के गुणगान को अपने कानों से सुनता रहे। पूरे नाद सवाद किसी प्रकार के शब्द के मोहजाल में, दूसरे मोहजाल कई प्रकार के अच्छे से अच्छे शब्द जाल सुनने को मिलते हैं, उनमें आसक्ति त्याग देनी चाहिए। अब शब्द रूप है वो निर्गुण परमात्मा का रूप है गुरु महाराज में, और शरीर है वो परमात्मा का सगुण स्वरूप शरीर है, तो दोनों ही में मौजूद है, सगुण निर्गुण ये दोनों साथ में है। तो सगुण निर्गुण रूप में अगर सगुण में निष्ठा है तो भी गुरु शरणागत गुरु महाराज के सत्संग के बाद गुरु महाराज की महिमा सुन करके आप लाभ ले सकते हो, और निर्गुण की निष्ठा है तो उनके शब्दों के द्वारा लाभ ले सकते हो। सरगुण पुण्य सेव सरगुण यू करो, सरगुण के रूप में ही साक्षात गुरु महाराज हमारे सामने परमात्मा इनके रूप में मौजूद है। ऐसी निष्ठा मान करके जब आपने सेवा करने चालू कर दी तो साक्षात वो सेवा संतन की सेवा किए हरि की सेवा हो, साक्षात परमात्मा की ही सेवा बनेगी, दूसरों की सेवा की कोई बात ही नहीं। और शब्द को मान लिया जैसा वो कहे वैसे करना है वैसा कर लिया, आनंद हो गया। मन बाद सतगुरु पूज करे, मन वचन वाणी से उनका आश्रय रखे, कोई दूसरा उपाय पार होने के लिए कहे कि भाई इससे पार हो जाओगे कुछ भी नहीं रखे, तो इस सेवा के द्वारा सगुण रूप में परमात्मा के रूप को समझने में आप निसंकोच भाव से लग करके सहज भाव से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही गुरु महाराज उन्हीं को बनाया है जो गुरु साक्षात परब्रह्म है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है गुरु महाराज, वैसा ही जैसा पहले बताया था उसी प्रकार को उन्हीं हमने गुरु बनाया है, तो अब इसके सिवाय दूसरी कोई बात रहेगी नहीं। सगुण निर्गुण दोनों रूप गुरु महाराज के माध्यम से, तो ऐसे तो ये तो प्रथम भक्ति है सुननी, उनकी महिमा सुननी, इस प्रकार गुरु महिमा सीखे सुने। आपो ले विचार, भजन करे गुरुदेव को सो जन उतरे पार, भजन करे गुरुदेव। अब वो भजन जिनकी सेवा करना है तो उनका स्वाभाविक चिंतन रहेगा ही, उनकी सेवा में कोई तकलीफ तो नहीं, उनको किस में किस बात की जरूरत होगी, कोई समय की आवश्यकता थोड़ी है, उनके लिए सदैव अपने आप को तैयार रखे आवश्यकता के लिए, ऐसा नहीं कि वो बुलावे जब जावे, आप निरंतर तैयार रहे। जैसे हनुमान जी तैयार रहते थे ना राम जी के दरबार में, हनुमान जी सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली राम दरबार में, जब वापस सब लोग आ गए राम जी राजा बन गए, सब सेवा करने लगे, सेवा ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी करते थे, तो सब भाइयों ने विचार किया परिवार वालों ने कि हनुमान ऐसा है कि हमारे को कोई सेवा का मौका देता ही नहीं, खुद ही सब सेवा कर लेता है, क्या करें। आखिर में सब ने कहा भाई ऐसा करो, अब मना तो कैसा करेगी, ये तो मत करो। एक बार सब लोग मिलकर के सेवा का बंटवारा कर लो, ये सेवा मैं करूं ये सेवा मैं करूं, सब ने अपनी लिस्ट बना ली सेवा की, ये काम लक्ष्मण करेगा, ये स्वयं भरत करेगा, ये सीता करेगी, ये शत्रुघ्न करेगा, इस सब ने बंटवारा कर लिया पूरे परिवार वालों सेवा का, कोई सेवा का काम बाकी नहीं रखा, लिस्ट बनाई और राम जी के दरबार में राम जी को हाजिर की कि महाराज ये एक आज की पेशी का पत्र है पढ़ लीजिए, इस पर दस्तखत कर दीजिए। राम जी ने लिस्ट को देखा, सब ने सेवा का बंटवारा कर लिया है पर हनुमान का तो कोई नाम है ही नहीं, क्या बात है भाई, पर आज इससे बचेगा वो भी सेवा हनुमान कर लेगा, ये तो हम करेंगे, इससे बचा हुआ सेवा का काम वो हनुमान को संभाल दो। राम जी को सिया कि ठीक, जो मुख्य सेवक है उसको तो या भुला ही दिया, तुम लोगों ने बाकी सेवा करके अब कोई काम है बचे नहीं अपने हिसाब से, दस्तखत कर दिए ठीक है मुझे मंजूर है। अब अगले दिन सेवा के लिए हनुमान जी आए तो कह दिया लिस्ट बता दे कि ये है पहले देख लो। देखिए तो ऊपर से नीचे तो बार बार पढ़ लिया, खुद का कहीं नाम निशान भी नहीं, मुझे क्या सेवा करनी, कोई लिखा ही नहीं मैं क्या सेवा करूं। राम जी के पास में गए कि मैं क्या सेवा करूं महाराज, भाई अब लिस्ट लिखी हुई है जो इससे बचा हुआ कोई सेवा कार्य हो वो कर लेना। इतने में हनुमान जहां राम जी बैठे थे बैठे बैठे राम जी को उबासी आ गई, उबासी आई। हनुमान जी ने कहा हो इस समय उबासी आते थे हम चुटकी बजानी चाहिए, चुटकी बजानी चालू कर दी। अब हो याद आ गई कि ये काम ठीक है ये सेवा का काम, कोई उबासी आएगी राम जी को उस टाइम सेवा कौन करेगा, ये काम मैं कर लूंगा। अब उबासी कौन सी टाइम आए कोई टाइम फिक्स थोड़ी है, इसलिए हनुमान जी बिल्कुल राम जी के सामने नजर लगा करके मुंह की तरफ एक टेक दृष्टि से देखने लगे, देखते गए देखते गए देखते गए। अब हनुमान जी के मन में अब उबासी आवे चुटकी बजाऊ, अब उबासी आवे कब उबासी आवे चुटकी बजावे। सुबह से शाम तक खाना पीना भूल गए और हर समय केवल राम जी का मुख ताकते गए। शाम की टाइम हुई सोने का टाइम हुआ, हनुमान से कहा सीता जी ने बेटा अब तो बाहर जाओ अब हमारा सोने का समय हो गया है, तो रात को उबासी आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा, वो मैं क्या जानू। हनुमान जी कैसी मुसीबत आ गई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई मामला, तो ऐसा करो अपने ऊपर बैठ करके चुटकी बजाते रहो, अब जब उबासी आएगी तब राम जी स्वीकार कर लेंगे, नहीं है तो और क्या करें, जब आए तब स्वीकार कर लेंगे, अपने चुटकी बजाते चलो। छत पर बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करने में लग गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय
राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, ये भगवान का नियम है कि जो मुझे जिस भाव से याद करता है मुझे उसी प्रकार बनना पड़ता है। तो हनुमान जी के मन में अगर राम जी को उबासी आवे है तो मेरी चुटकी काम आवे, अब वो चुटकी बंद नहीं करे तो राम जी की उबासी बंद नहीं हो, राम जी को उबासी आई बाको फाड़ दियो। अब हनुमान जी चुटकी बंद करे तो राम जी के मुंह बंद हो, और वो छत पर बैठे उनको क्या पता कि अब राम जी को उबासी आई मुंह खुला हुआ है तकलीफ हो रही है, वे मस्ती में कीर्तन में मगन हो गए छत पर बैठे एकांत में, बस यहाँ कोई सुनने वाला नहीं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं। इधर मुंह फटा हुआ देखा तो सीता जी घबरा गई कि ये क्या हो गई, बलाएं आ गई क्या। माता जी को बुलाया, माँ भी घबरा गई, गुरु जी को बुलाया, वैद्य जी को बुलाया, जो जो जानकार थे सब लोगों को बुलाया, पूरा परिवार रात को इकट्ठा हो गया, चारों तरफ घेरा लगा दिया, पर राम जी का मुंह खुला से खुला बंद ही नहीं हुए। सब लोग घबराए गए क्या करें क्या नहीं करें, आएगी कैसी तकलीफ हो गई अब क्या किया जाए, ऐसे सब परेशान हैं। गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी आए, कहने लगे रे बात क्या रे, सब लोग खड़े हो ज्यादा तकलीफ होती है तो ऐसे संकट के समय पौंत ने संकट हरण मंगल मुहूर्त रूप संकट मिटाने वाला पौंत सुद हनुमान है वो तो नहीं दिख रहा, कहा गया, अरे खोज उसको पता लगाओ जल्दी। अब ढूंढने के लिए गए ऊपर, इधर उधर देखा नीचे तो कहीं मिले नहीं, छत पर एकांत में बैठे कीर्तन करते दिखे रहे, हनुमान जी क्या हुआ, राम जी का मुंह फटा रहा है तकलीफ हो रही है जल्दी चलो। हनुमान जी तो सीधे ही कूदे पर बाईपास ही, दूजा तो जावे नाल नाल पोगत पोगत उतर करके आवे, वो अनुपोगत जरूर थोड़ी है। सीधे कूद करके आए, महल में गए, राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े किए, खड़े हुए, चुटकी बंद हुई, उनका मुंह बंद हो गया। तब बात मालूम पड़ी, सब ने कह दिया भाई ये सेवा सारी चाकरी आपको बोलाई अड़ी, आप बदमाने तो को लेने की सेवा थाने थाने कंध रखो। तब जो पता नहीं कौन से टाइम में तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमद राक्षसांतकम। तो ये बताएगा मन वाच शतक गुरु पूज करे और आन उपाय न कान धरे, कोई दूसरों की बात पर सेवा करते समय ध्यान देना ही नहीं चाहिए, अपने धुन में केवल सेवा का। अगर सगुण रूप परमात्मा मान रहे हो तो उस रूप में परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, जीवात्मा का कल्याण निश्चित होगा। पहली भक्ति का बाद श्रवण भक्ति का बाद प्रसंग बताया, दूसरी कीर्तन भक्ति, हरिगुण गुरु मुख उचरे, गुरु महाराज के जो सद्गुण है साक्षात भगवान के समान उन्हें मानते हुए लोगों के सामने उनका वखान करता रहे। भूरि भाग्य तिन देह कद पावन आवन दर्श, ऐसे गुरु महाराज का कब दर्शन होगा, सौभाग्यशाली दिन वो होगा जब उन गुरु महाराज के ऐसे गुणवान महापुरुषों के दर्शन मिलेंगे। ऐसे गुरु महिमा का कीर्तन करता रहे, गुरु महिमा का वखान करता रहे, वो सुनाता रहे, सास सास में गुरु महाराज के प्रति हृदय प्रफुल्लित होता रहे, यही सच्ची सेवा है। इस प्रकार ये कीर्तन करना है, गुरु महाराज का कीर्तन करना, उनकी महिमा का वखान करना, लोगों के सामने उनकी महिमा सुनानी। सदगुरु समा नहीं पर दिखना, सदगुरु समा प्रेम नहीं चकना, सदगुरु सम तीर्थ नहीं तिरना, सदगुरु समा और नहीं फिरना, सदगुरु समा धूप नहीं रूपम, सदगुरु समय नहीं तत् अनुपम। इस प्रकार ही महाराज गुरु महाराज की महिमा, गुरु महिमा का वर्णन करते हैं, तो उसी से प्रेरणा पाकर के दयाल जी महाराज ने गुरु प्रकरण लिखा है। अपनी खुद की महिमा के लिए नहीं, सत्पुरुष कोई महिमा का बखान करते हैं, गुरु होवन गुरु धर्म के मनवा भरो विकार, रामा तुक लेपन क्या कुष्ठन होता कार। अगर खुद वर्ण गुरु बनने के लिए गुरु महिमा का कोई वर्णन करता है या वखान करता है, ऐसी गुरु महिमा होती है। केवल आप मतलब तुम मुझे गुरु बना लो ऐसा मन में भाव रखते हुए यदि कोई भी गुरु महिमा का वखान करेगा तो वो कोट के समान इलाज होगा, समझ लीजिए। कोट तो है और ऊपर से मलम लगा रहा है, कोट ठीक होने का है क्या? रामा तुक लेकिन क्या कुष्ठ न होता कार, तो अंदर कोट की बीमारी है कार, खुद का अंदर बीमारी है, तो नहीं अपने गुरु बनने के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज ऐसे होते हैं। इसलिए आप ऐसे गुणवान महापुरुषों का आश्रय पकड़ो, जीव का उद्धार करना है तो। इस तरह लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये गुरु धर्म की बात बताई जाती है, गुरु महिमा की बात बताई जाती है। तो ये गुरु महिमा का वर्णन, गुरु प्रकरण का वर्णन, जीवों को प्रभु के चरणों में प्रेम पैदा करने के लिए, गुरु महाराज का आश्रय लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ही वर्णन किया है। प्रथम ग्रंथ की रचना है, पहला ग्रंथ गुरु महिमा का दयालु बना। और शायद कितनी संतों की वाणी बहुत सी है, लेकिन इतना बड़ा विशाल ग्रंथ गुरु महिमा के रूप में कोई लिखा हुआ है अभी तक देखने में नहीं आया। केवल गुरु महिमा के विषय में इतना विशाल ग्रंथ, मतलब पूरी रामायण की जितनी लंबी चौड़ी है वो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा ग्रंथ है ये गुरु प्रकरण। तो इतना बड़ा विशाल ग्रंथ गुरु महिमा के रूप में वर्णन किया, दूसरा मिलता नहीं, जो कि प्रथम प्रेरणा पाकर के दयाल जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार कहते परम आनंद इससे प्राप्त होती है, ये आपकी कीर्तन भक्ति है, उनकी महिमा का वखान करना। गुरुदेव जो आए मंगल गाए, जब गुरु महाराज पधारे आप उनका मंगल गान किया, अपार हृदय में आनंद की लहर छा गई, बधावना करते हैं, बड़ा मन में उत्साह भरा हुआ है, ऐसा मन में उत्साह है जैसे साक्षात परमात्मा खुदो खुद मिल गए हैं। ऐसे जैसे श्रुतदेव ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण मिले थे और जैसा उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ, वही प्रेम भक्त के हृदय में गुरु महाराज के दर्शन करने पर प्राप्त होना चाहिए, हृदय में उमंग छा जाना चाहिए। अपार महिमा है, अपार महिमा में हृदय सराबोर हो जाना चाहिए, घर घर में यही आनंद छाता रहे, ऐसी मन में भावना होनी चाहिए। सभी प्रेमी लोगों के हृदय में इसी प्रकार गुरु महाराज का अगाध प्रेम फैलता रहे, ऐसा सद्भाव हृदय में होना चाहिए। इस विषय में महाराज का वर्णन किया हुआ भजन बधावने के रूप में वो यही, घर घर मंगलाचार दीपक जो यारे राम, घर घर
मंगलाचार
दीपक जो यारे, कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे, कहीं सखिया
हिल मिल हो प्रीतम
मो यारे, घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
मारे घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो ये प्रीतम मो यारे,
दिवाली आज हरिजन मिलिया रे,
दिन दिवाली आज
हरिजन मिलिया रे, कोई भोजन भाव अनेक भव दुख टलिया रे,
कोई भोजन भाव अनेक भव दुख टलिया रे,
घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
कोई सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
कोई सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
कृष्ण मिलाप वृंदावन थैयारे,
गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थैयारे,
कोई शरद पूनम को रास देखत रैयारे,
कोई शरद पूनम रो रास देखत रैयारे,
कोई शरद पूनम नो देखत रैयार,
कोई शरद पूनम रो रास देखत रैयार,
राम घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
राम घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
सब पुरवासी लोग जागत रैयारे,
सब पुरवासी लोग जागत रैयारे,
कोई लक्ष्मी वरन पूज पदारथ पैयारे,
कोई लक्ष्मी वरन पूज पदारथ पैयारे,
कोई घर घर मंगलाचार दीपक जो यारे,
राम घर घर मंगलाचार दीपक जो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
कहीं सखिया हिल मिल हो प्रीतम मो यारे,
दयाल बाल वरदान सचेला पाया रे,
दयाल बाल वरदान सचेला पाया रे,
कोई भक्ति प्रेम समाज हरि जस गाया रे,
कोई भक्ति प्रेम समाज हरि जस गाया रे,
कोई भक्ति
प्रेम समाज हरि जस गाया रे, कोई भक्ति प्रेम समाज हरि जस गाया
रे, राम घर घर मंगला चार दीपक जो यारे,
राम घर घर मंगला चार दीपक तक जोया
रे कई सखिया हिल मिल हो प्रीतम मोया रे
कई सखिया हिल मिल हो प्रीतम मोया
रे कई सखिया हिल मिल हो
प्रीतम मोया
रे। देख उदाहरण देकर के आनंद उत्सव कैसा हृदय में उमड़ रहा है बता रहे हैं। दीपावली का दिन आया, लोग बाग घरों की सफाई करते हैं, आनंद उत्सव मनाते, खुशी मनाते, घर घर में दीपावली होती है, दिया उत्सव होता है। तो आज सत्पुरुषों का दर्शन मिलाया, तो आज भी हम घर घर में पूरे शरीर में रोमांचित हो रहा है। इस प्रकार घर घर में दीपावली का उत्सव मनाओ, इतनी खुशी मनाओ। भाई उस दीपावली में तो मिठाई मिलती है, शीरो मिले, गुलाब से मिले, वो अटक आता आवे भोजन भाव अनेक, या भाव रूपी भोजन मिल रहा है भाव रूपी, और भाव के बिना काम नहीं चलता है, भाव से सारा बाजार निहाल हो जाता है, भाव अगर नहीं हो तो दुनिया डूब जाती है। वही भाव सत्पुरुषों के संग में जाने से, उनके दर्शन करने से दिन दोगुना रात चौगुना भाव प्रबल होता है। भोजन भाव अनेक, और इससे फल क्या होगा, उससे तो केवल भूख मिटेगी पेट की, और इससे भौतिक मिटेगा, जन्म जन्म का दुख हट जाएगा। भोजन भाव अनेक बहुदुख टली आ रहे, दिन दिवाली आज हरिजन मिली आ रहे, आज दीपावली के समान खुशी का उत्सव मनाओ। और इससे संतोष नहीं हुआ, आगे बताया गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थी आ रहे, जैसे वृंदावन में गोपी और कृष्ण का मिलन हुआ, उस समय कितना आनंद आया, कितना महाराज आनंदित होता है। तो तीनों लोकों में उसकी जो जय जयकार होती है उस महाराज की, तीनों लोगों के लोग बाग देवतागण विमानों में बैठ बैठ करके दर्शन का लाभ लेने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन होता है तो वहां पर आते हैं, उनको आनंद होता है। वहां पर जितना आनंद आया है गोपी कृष्ण मिलाप वृंदावन थैयारे, कोई शरद पूनम को रास देखत रही आ रहे, शरद राति की तो पूर्णिमा है और गोपी कृष्ण का मिलन हो रहा है, उस समय जो आनंद है वही आनंद आज हमें गुरुदेव के दर्शन से, सत्पुरुषों के दर्शन करने से यहाँ पर मिल रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। और भी आगे प्रश्न बताते हैं, इतनी खुशी क्या, अरे दीपावली का दिन होता है, ऐसे समय में दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है, लक्ष्मी की पूजा करती है ना, तो लक्ष्मी की पूजा करती है, तो लक्ष्मी की पूजा करती है दुनिया, तो वो क्या हमारे लिए, हम किसकी पूजा करेंगे, हम करेंगे लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के वर की लक्ष्मी रे बींद्री पूजा करा, लक्ष्मी री पूजा, लक्ष्मी तो लारे आनो पड़े आते ही, बीन जाए ना वो लारे रह गई। अरे कहीं आपके घर में शादी का और कोई त्योहार का मौका है, आप पत्रिका देख करके अपने कुटुम्ब परिवार लोगों को बुलाते हैं, चाहे बेटी को बुलाओ चाहे बहन को बुलाओ, उनको बुलाने के लिए आपने पत्रिका डाली, आप किसके नाम पत्रिका डालोगे बताइए, क्या बेटी के नाम डालोगे या बहन के नाम, वहां क्यों उस पति का नाम लिखते हो। अब पति का नाम लिखने से पत्नी उसकी अपना पाएगी उसको बुलाने पर, अरे यदि कहीं भूल से आपने बेटी के नाम पत्र दे दिया तो मुंड फूल जाए, बींद रहो तो तुमने बुलाया तू ही जा, मैं तो कुछ चल नहीं, तू जा अपने थने बुलाया है, मन तो याद ही को कर, वो लूट सकती है, नाराज हो सकती है। तो केवल लक्ष्मी को पूजा करोगे तो भगवान नाराज हो सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, परंतु अगर लक्ष्मी भर को याद कर लिया बुला लिया तो लक्ष्मी तो अपना आप आएगी, भगवान आएंगे, और भगवत रूप साधु में आवे लक्ष्मी ताका चरण संभावे, जो भगवान हृदय में आते हैं तो लक्ष्मी पैर पकड़ते, बाबा मने भी जगह देव, थोड़ी आटे रहने दो, मने भी जगह देव, कोई नहीं मैं चरण पकड़ करके रह जाऊं, और नहीं तो। इस प्रकार दुनिया जागती है दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए, पर राम जी ने जागरण में कदे जन्माष्टमी रो जागरण वह किया, वाह कहीं रामनवमी रो जागरण वह, कितनी दुनिया जागे, नाव तो लेवे जागरण को, पर जागरण में जान खूंटी खेचने अड़ा सुबह तो दिन उग जाता, और चढ़ते पास उठी नहीं कोनी, ओट गुजरो सोती नारायण ने नमन करी ने। अब गाने वाला बेटी वाला बेचारा बंद तो कहीं करे, रात भर जीव तो करे टूटा करना पड़े, क्योंकि वन तय करियो है पैसा भेट पूजा लेनी है, नहीं बजाए तो भेट पूजा कौन दे, और सुनने वाला तो मैं मारे मर्जी है सुना कि नहीं सुना, भैया इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी वर ने पूज पदार्थ पैयारे, हम लक्ष्मी की पूजा की जगह लक्ष्मी वर की पूजा करेंगे, अर्थात हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के आश्रित होंगे तो लक्ष्मी तो वही अपना पीछे आएगी। तो संत महात्माओं के लिए देखते हैं ना, एक दफे प्रसंग संतों से सुना, एक जगह कहीं महात्मा जी जा रहे थे एक गांव से आगे, वहां पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर औरत को देखा। उस औरत का शरीर बड़ा सुंदर, मुखड़ा बड़ा सुंदर और केश भी सुंदर होने चाहिए, लेकिन केशों में गड़बड़ी थी, आगे के केश यहां से उसके साफ और पीछे के केश भी साफ, बीच में थोड़ा चुट्टो बचीड़ो, आगे केश साफ पीछे केश साफ। बाबा जी ने उससे पूछा, देवी तू कौन है? महाराज मैं लक्ष्मी हूं। अरे लक्ष्मी है तो तेरे केशों की ये दुर्दशा क्यों? वो कह महाराज आगे के केश तो मैं महात्मा लोगों के चरणों में रगड़ करके केश साफ कर दिए। महाराज मुझे रहने दो, मुझे जगह दो, मुझे दो, नहीं जाओ दूर जाओ, मैं जरूरत नहीं तुम्हारी, गर्ज नहीं। आगे के केस तो महात्मा लोगों के चरणों में रगड़ कर खत्म कर दिए और पीछे वाले के दुनिया पकड़ के चोट लूट लिया। मैं आगे भागू दुनिया केस मेरे पकड़े जाओ, मैं ठहरो। तो आगे वाले पीछे वाले दोनों केस साफ हो गए मेरे, तब क्या करो? संतों ने कहा हमें जरूरत नहीं, तो वो बात है, तो आगे के केस उनके चरणों में माथा रगड़ने से साफ होते रहते। इसलिए बताया कि लक्ष्मी वर ने पूज बदारत पे रहे। जागरण होता है तो जागरण करना, तो भगवान के लिए जागरण करो, परमात्मा के लिए जागरण रहो, मंदिर जागरण जहां जाए कीजिए, साध समाज दर्श भगवत को राम अमीरस पीजिए, भगवान का नाम रूपी अमृत रूपी रस उसका पान करो, वो जागरण से। तो लक्ष्मी के लिए जागरण करते हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए जागरण करोगे तो लक्ष्मी अपना वो आ ही जाएगी। लक्ष्मी वर ने पूज पदार्थ पैया रे, दयाल बाल वरदान सचेला पाया रे, भक्ति प्रेम समाज हरिज सगाया रे। दयाल जी महाराज वर्णन करते हैं, भाई भक्ति और प्रेम का मिलन है वो मैंने इस पद में बताया है। भगवान भक्ति भक्ति और प्रेम, प्रेम तो है कृष्ण का रूप और भक्ति है गोपी है, तो प्रेम और भक्ति का जहां मिलन होता है वहां पर जीवात्मा में दिव्यता विलक्षणता आ जाती है। तो वही विलक्षणता यहाँ भक्ति के माध्यम से उसके वर्णन के माध्यम से महापुरुष बताते हैं। तो इस प्रकार पहले श्रवण भक्ति बताई और वो बाद में कीर्तन भक्ति बताई, तीसरी स्मरण भक्ति, उनका नाम लेना, स्मरण यही राम स्नेही हृदय प्रकाश, उनका स्मरण ये है कि सत्पुरुषों ने प्रेरणा क्या दी है, उन्होंने क्या वचन कहे, उनको याद करो। हम दुनियादारी की बातों को याद करते हैं, इतिहास की किताबों को पढ़ करके याद करते हैं, कौन सा राजा कब हुआ, किस टाइम हुआ, क्या करता, कौन कहाँ का राजा, आज कौन सा है, मिनिस्टर कौन सा है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये याद रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, बात वो याद रखनी चाहिए जिससे परलोक का सुधार हो। अरे यहाँ कितना भी रखोगे तो भी सब झूठा ही झूठा होगा, क्योंकि उसमें आप प्रशंसा करोगे तब तो आपकी पूछ होगी, और प्रशंसा नहीं करके यदि आपने उनकी निंदा करनी चालू कर दी तो वो नाराज हो जाएंगे। परमात्मा कभी नाराज नहीं होते, वो तो निंदा करते तो भी राजी और प्रशंसा करते हैं तो भी राजी, दोनों में समान रहने वाले। अरे निंदा करने वाले को भी भगवान की प्राप्ति हुई, शिशुपाल ने कितनी निंदा की, भरी सभा में 101 गाली निकाली, बताइए अपन को एक गाली निकाल दे तो भी हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सब गाड़िया निकाल दी, बोलता गया भगवान सुनते गए, मुस्कुराते गए, परवाह नहीं करते हैं क्या होता है। सज्जनों इस प्रकार तो स्मरण याद करना है तो महापुरुषों के वचनों को याद करो, प्रेम के फुहारे शरीर में चलने लगेंगे, आपका शरीर निश्चल हो जाएगा और इससे संशय सच्चा रंग लग जाएगा, संसार की फांस बंधन है वो बंधन छूट जाएगा उन बातों को याद करने मात्र से। चौथी है उनकी चरण सेवा की पाद सेवन, चौथी भक्ति, नित पद सरोज बंज लोटपोट, सदैव उन महापुरुषों के चरणों में लोटपोट होइए, उनके चरणों का स्पर्श कीजिए, चरणों में वंदन कीजिए, चरणों का ध्यान कीजिए, दूर होने पर उन चरणों को हृदय में चिंतन करके और हृदय में विराजमान कीजिए, पास में होने पर उन चरणों का स्पर्श कीजिए। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमित दोष विभंजन, जो चरणारविंद है उनके चरणों की धूली जो हमारे सब प्रकार के संसार के दोषों को दूर करने की शक्ति रखने वाली होती है। नयन अमीय नेत्रों के लिए वो अंजन है, नेत्रों के लिए अंजन दृग दोष विजन, जो हमारी दृष्टि का दोष है, जो इसमें बुरापन आता है, जिससे हम संसार को बुरा देखते हैं, वो उसे बदल करके ठीक कर देंगे, सुधार देंगे, जिससे सारा संसार सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर युग पानी हो जाएंगे। जहां देखो वहां केवल भगवान ही भगवान दिखेंगे। नित पद सरोज मज लोट पोट मन वाच कर्म गुरुदेव ओट, मन वचन कर्म से गुरुदेव जी के महारानी चरणों का आश्रय रखो, चाहे कुछ भी हो जाओ उन चरणों से कभी दूर मत हटो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलने वाले ये चरण, सुगमता से मिलने वाले नहीं है, और जो मिल गए हैं तो अगर एक बार इनको छोड़ दिया तो वो डोरे में गांठ पड़ जाती है ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, फिर आगे क्या कहते हैं, टूटे पर फिर ना संदे और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गांठ तो पड़ ही जाएगी भाइयों, डोरे को सुई के नाके में से निकालो निकल जाएगा, पर गांठ पड़ा हुआ डोरा निकालो कैसे निकलेगा। इसलिए सावधानी से तो पहले चरणों का आश्रय पकड़ो, लेकिन पकड़ने के बाद में फिर उनसे कभी अलग मत हटो। नित पद सरोज मज लोटपोट मन वचन कर्म गुरुदेव, मन वचन कर्म से उन गुरु महाराज का आश्रय रखो। तद रह समीप सेवाज साध अंतराय अंग शासा आराध, जब आप उनके पास में हो तो एक एक श्वास के साथ में उनकी सेवा के साथ में जुड़े रहो, और जब दूर हो तो एक एक श्वास के साथ में उन्हीं चरणों को अपने हृदय में विराजमान रखो। आप देखिए हर शिष्य